आगे बढ़ाते हैं। किया है और इसमें मुख्तलिफ मबालिस किए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरी दीन और पूरे मजहब का जिस चीज़ पर बेस है वो अकायद है, और अकायद जिस चीज़ पर बेस है वो तौहीद है। बस ये कि तमाम अली आसमानी अलिया, तमाम अम्बिया जो कि दीन लाए हैं, उनका महवर और मरकज क्या है? नज़रिए तौहीद। लिहाजा तौहीद इतना अहम और इम्पॉर्टेंट अंसर है दीन में, क्योंकि हमारी बहस में हम ज़्यादातर अपनी जलाल पर चल रही है, इसमें हम अहादीस रिवायात को इसको टच कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है, वरना हमारी बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। सिर्फ मैं एक हदीस जो है तौहीद के गुमान से कर लाया हूँ, जो कि इतने मसूद से रिवायत की है रसूल खुदा से, कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम एक लहजे के लिए भी मुशरिक ना हो, मुशरिक तौहीद का मुतलक है, एक लहजे के लिए भी मुशरिक ना होना, चाहे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, चाहे तुम्हें आरी से दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए, चाहे तुम्हें हत्यादार पर चढ़ा दिया जाए, और चाहे तुम्हें आग में जिंदा जला दिया जाए। इतनी इम्पॉर्टेंट है कि उसमें खुदा फरमाए, चाहे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, आगे से तुम्हें तकसीम कर दिया जाए, हथियार पर रखना पड़े, या तुम्हें आग में जिंदा जला दिया जाए, फिर भी तौहीद को नहीं छोड़ना। इससे इसकी मरकजियत और इसकी अहमियत का हमें अंदाज़ा होता है कि पूरे दीन की बिना जो है इस अकीदे तौहीद पर है। अब ये क्यों है, इसको इंशाल्लाह हम अक्साम में जब आएंगे तब इसकी अहमियत हम बता देंगे। तौहीद की अक्साम को शुरू करने से पहले एक और स्लाइड्स में आनी चाहिए थी, लेकिन अहमियत ने वो है वाहिद और अहद का फर्क। हम कहते हैं खुदा वाहिद नहीं है बल्कि अहद। अरबी जबान में वाहिद और अहद में एक बुनियादी फर्क है। वाहिद जो है वो क्या कहते हैं, मैथमेटिकल यूनिट है, यानी डिजिट, वाहिद यानी एक, कोई भी चीज़ एक हो सकती है, ठीक है ना। ये इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि एक किताब है, लेकिन ये एक, इसका दो भी मुमकिन है, इसके दस भी मुमकिन है, इसके दूसरे डिजिट्स भी मुमकिन है, इसको कहते हैं वाहिद। लेकिन अहद वो होता है कि जिसका एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुमकिन ही नहीं। बस खुदा वाहिद नहीं है कि जिसका दूसरा तसव्वुर हो सकता है या बाद में कोई इसका दूसरा आ जाएगा। जैसे हम दीगर अशिया को कहते हैं कि एक, सही, बल्कि खुदा वाहिद की बजाय अहद है। अहद यानी जिसकी दूसरा मुमकिन ही नहीं, दूसरा इसका तसव्वुर करना ही मुमकिन नहीं है। बस खुदा जो है वो ये अरबी जबान के लिए लताकत है, तो उसमें जो है वो इतने दकी माना है, इसलिए अल्फाज कशीदा है, क्योंकि दीगर जबानें इससे तारी। बस ये था फर्क वाहिद और अहद। अब हम आते हैं तौहीद, यानी खुदा एक है और उस जैसा कोई नहीं है, यानी यक्ता है, यानी उस जैसा कोई नहीं है, ऐसा कभी नहीं शय, उसके जैसी कोई दूसरी शय नहीं। ये तौहीद के मान है। तौहीद की में भी ये चार अक्साम की जाती है जो आपके सामने लिखी हुई है, तौहीद ज़ाती, सिफाती, अफ़ाली और तौहीद अमली। इसको एक एक को हम बयान करते हैं और फिर हम अपनी बहस फॉलिंग करते हैं। अलबत्ता इसके पहले हमने जो तौहीद की अपनी दलाइल पेश की है, जो आगे थोड़ा सा उसका एक डिग्री भी कर दिया, और भी कई सारी दलाइल हैं, ऐसा नहीं कि एक ही दलील है। मसलन दूसरी दलील जो तौहीद की है वो दलील फितरत। हमने दलील फितरत में क्या पढ़ा था? हमने दलील फितरत में ये पढ़ा था कि हर इंसान जब मुश्किलात में मसाइल में गिरता है तो एक हस्ती को महसूस करता है, लफ्ज करता है कि कोई है जो उसको बचाएगा, जो पावरफुल है, जो उसको निजात देगा। जिसने भी इस हस्ती को महसूस किया है, एक महसूस किया, दोनों कहीं महसूस किया। तो दलील फितरत भी तौहीद पर एक दलील है। जिस जो शख्स भी जब मुश्किलात और मसाइल में गिरता है, जब तमाम मादी ज़राए मुतका हो जाते हैं, नामी हो जाता है, तो वो एक ज़ात की तरफ मुतवज्जे होता है, वो एक ही होती है हमेशा। कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने 9 महीने दो खुदाओं को महसूस किया, दो खुदाओं को लफ्स। बस ये दूसरी दलील है। होती तीसरी दलील जो है नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहि सलाम ने पेश किया, बहुत ही सादा और आसान सी तरीके है। वो ये है कि हर खुदा के लिए अपने आप को पहचानवाना जरूरी है। अगर कोई खुदा है तो उसको पहचानवाना चाहिए कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, मेरी इताअत करो। जितने भी अंबिया आए सबने एक खुदा की तरफ दावत। कोई भी ऐसा नबी नहीं आया जिसने कहा कि मसलन दो खुदा, ठीक है। बस इसका मतलब है कि वाकई एक खुदा, यानी अगर झूठे अंबिया भी आए हैं तो वो भी जाहिरन यही साबित करते रहे कि हमें उस एक खुदा ने भेजा। बस अगर दूसरे खुदा होते तो हतमन ऐसे अंबिया आते जो हमें बता दें कि इस एक खुदा के अलावा भी कोई और खुदा है। बस ये इसका मतलब हमने तीन दलाइल पेश कर दी है वजूद खुदा तौहीद पर। एक जो है दलील अकली पेश की, दूसरी दलील दलील फितरत है। अब अगर कुछ लोग क्योंकि पिछली क्लास में अगर उन्होंने अटेंड नहीं किया तो वो देख सकते हैं हमारे कुरान दोस्तों नेट पर। और दलील फितरत से भी हम तौहीद साबित करते हैं। और तीसरी दलील जो है नहजुल बलागा की आपके सामने पेश की गई। अब हम आ जाते हैं तौहीद की अक्साम पर। पहली तौहीद की किस्म है तौहीद ज़ाती, यानी खुदा अपनी ज़ात में यकता है, यानी खुदा अहद है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है, यानी खुदा अपनी ज़ात में एक। इसके बाद आती है तौहीद सिफाती, यानी खुदा की सिफात एन ज़ात। ये क्या मतलब है खुदा की सिफात एन ज़ात है? बस दफ़ा हम चीज़ें देखते हैं कि जैसे हम कहते हैं पानी गीला है, पानी तर है, ठीक है, और एक दफ़ा कहते हैं कपड़ा गीला है या कपड़ा तर है। दोनों की तरी में फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क। जो पानी की तरी है वो उसकी ज़ाती है। अगर पानी से तरी ले लें तो पानी पानी नहीं रहेगा, सही। लेकिन कपड़े की तरी जो है वो कपड़ा खुद से है, तरी को हासिल करता है, आरिज होती है उसके बाद आरबी में कहते हैं आरिज हम लोग की कष्ट करता है उसको इंसान। जैसे हम लोग इल्म हासिल करते हैं, अनबिया वही हासिल करते हैं, इल्म हासिल कर, लेकिन खुदा का इल्म ज़ाती है। या मसलन मिसाल देते हैं नमक और खारा पानी। एक दफा हम कहते हैं नमक नमकीन है और एक दफा कहते हैं मसलन पाना गजा नमकीन है। नमक की जो नमकीनी है वो उसकी ज़ाती है, उसको जुदा नहीं कर सकते। लेकिन खाने की नमकीनी को अगर हम नमक निकाल लें तो बस खुदा की सिफात इस तरीके से है कि खुदा की सिफात को हम डिटैच नहीं कर सकते, या खुदा उन सिफात को कस्ट नहीं करता कहीं से, वो उसकी ऐन ज़ात है, ज़ात में शामिल है। ये बहुत ही फलसफे में बहुत डिफिकल्ट बहस है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इंशाल्लाह फिर कहीं कोई एडवांस लेवल होगा तो फिर इससे ज़्यादा आगे जाएंगे। बस आप लोग ये समझते हैं कि खुदा की सिफात ऐन ज़ात की सिफात और ज़ात एक है, सिफात इज इक्वल टू ज़ात, ज़ात और सिफात एक है, सिर्फ मफ़हूमन हम जो मफ़हूमन अलग है, मिज़दाक में एक चीज है। इसके बाद है जो सब बहुत इम्पोर्टेंट है तौहीद की किस्म है, वो है तौहीद अफ़ाली। तौहीद अफ़ाली कहते हैं खुदा अपने अफ़ाल में किसी का मोहताज नहीं है। ये पूरी कायनात फ़ेल खुदा है, खुदा जब फ़ेल अंजाम देता है उसका एक फ़ेल क्या है, ये कायनात का फल। ये तमाम कायनात जो है वो फ़ेल खुदा है। और इस कायनात में हमें जितनी भी नूरानियत नजर आ रही है, जितनी भी रहनाइयाँ हैं, जो कुछ है वो सब खुदा के वजूद से है। बस तौहीद अफ़ाली, तौहीद ज़ाती यानी खुदा की ज़ात एक है, तौहीद यानी है। तौहीद सिफाती यानी खुदा की सिफात अलग अलग नहीं है बल्कि ऐन ज़ात है, उसकी ज़ात में शामिल। तौहीद अफ़ाली यानी खुदा अपने अफ़आल में किसी का मोहताज नहीं है। ये इन चारों की एक डेफिनेशंस जो है वो मुतकल्लिमीन कलाम में कलाम के लोग एक्सपर्ट्स करते हैं। कुछ इसकी डेफिनेशंस उरफा और जो सैरो सुलूक के मनासिब तय करते हैं वो लोग करते हैं, उनकी डेफिनेशंस इस डेफिनेशन से डिफरेंट है। हम जो भी डेफिनेशंस बयान कर रहे हैं वो कलाम के एक्सपर्ट्स जिसको मुतकल्लिमीन कहते हैं यानी अकायद के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अकली बुनियादों पर और कुरान और सुन्नत की रोशनी में चीज़ों को डिफाइन करते हैं, हम उनकी डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं। उरफा की डेफिनेशंस अगर किसी को पढ़नी हो तो सैर सुलूक में शेख बुखारी ने इसको बयान किया और अच्छी तरह से, और इस्बा ने भी उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से बयान किया है। ये किताब है खुदाशनासी, खुदाशनासी में उन्होंने इसको अच्छी तरह से बयान किया। अब तौहीद अफ़ाली के बाद जो अगली किस्म है वो है तौहीद अमली। तौहीद अमली ये है कि हमारा हर अमल फकत और फकत खुदा के लिए होना चाहिए। बस मतलब इस्लाम में तौहीद फकत नजरी नहीं है, फकत मानना नहीं है बल्कि कुछ अमल भी करना है, उस मानने के मुताबिक अमल भी करना है। बस फकत ये जो पहली तीन किस्में हैं ये क्या है, इसको हम कहते हैं नजरिए, यानी हमारी फिक्र से ताल्लुक रखती है, हम नजरिए किससे ताल्लुक रखते हैं कि हमारा तसव्वुर ये है, हमारा नज़रिया ये है कि खुदा अपनी ज़ात में एक है, खुदा की सिफात उसकी ज़ात के बराबर है और खुदा अपने अफ़ाल में किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ये क्या है, ये फिक्री यानी बबल
तोड़ना चाहता है। एक बोते फिक्री है, हमारी फिक्र में बोते हैं कि नहीं खुदा के अलावा भी कोई चीज़ है, नहीं खुदा के अलावा कोई कादिर शय नहीं है, खुदा के अलावा जितनी अशियाँ सब उसकी मोहताज है, ये फिक्री बोते हैं। लेकिन दीन इस्लाम फकत तसव्वुरात का नाम नहीं है, फकत अफकार का नाम नहीं है बल्कि आमाल का नाम है। बस बुते खारिजी, बुते अमली को भी तोड़ना ज़रूरी है। आज अगर किसी ने जो है वो खुदा के सामने कद अलम किया है तो उसकी नफ़ी करना ऐन तौहीद है। लिहाजा हमारे जितने अनबिया आते रहे उन्होंने हर वक्त के फिरौन को, नमरूद को ललकारा है, उनके खिलाफ जिहाद किया है, उनके खिलाफ जाने दिए। बस हमारा दीन क्या है, दीन मुतहर्रिक है और ये है तौहीद का तकामुल, तौहीद का कमाल। फकत हम घर में बैठकर खुदा को एक मान लें, सिर्फ उसकी इबादत करें, खुदा के तौहीद ज़ाती सिफाती अफ़ाली मानने काफ़ी नहीं है। بلکہ ہمارے عمل میں بھی توحید آنی چاہیے. عمل میں توحید کا کیا مطلب ہے؟ مثلا اگر ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم خدا پر, ابھی آگے اس کی اقسام آئیں گی, خدا پر توکل کریں. اگر ہمارے سامنے عمل کے مختلف راہیں ہیں, ایک خدا کی راہ ہے, دیگر دنیاوی راہیں ہیں, تو ہم خدا کی راہ اختیار کریں. یہ ہے توحید عملی. ایک دفعہ ہمارا آفس میں ایک باس ہے, باس کچھ کہتا ہے, دین کچھ کہتا ہے, ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ یہ ہے توحید عملی. بس توحید فقط افکار تک محدود نہیں ہے دین میں, بلکہ عمل کا نام ہے. پہلی تین جو توحید کی اقسام ہیں یہ خدا سے ریلیٹڈ ہے, لیکن چوتھی قسم ہمارے عمل سے ریلیٹڈ ہے, کہ ہمیں ایک خدا کی اطاعت پیروی کرنی ہے. انشاءاللہ اس کو ابھی آگے ہم اور اس کی اقسام کو بیان کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہاں پہ انہی چار صفات کو تھوڑا سا اور زیادہ ایلوبریٹ کیا گیا ہے. پہلی جو ہے توحید ذاتی, جو ہم نے کہا تھا کہ خدا اپنی ذات میں ایک ہے, اس کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ ہے کہ خدا کی ذات میں اجزاء نہیں ہے, اور ایک یہ کہ خدا کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے. لیکن دو چیزیں ہیں. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ خدا کے اجزاء نہیں ہیں, یہ بھی توحید ذاتی ہے, اس کو درونی کہتے ہیں, توحید ذاتی درونی. اور ایک توحید ذاتی خارجی ہے کہ خدا کے مقابلے پہ کوئی اور خدا نہیں ہے. بس یہ دو اقسام ہیں توحید صفاتی. اسی طریقے سے توحید افعالی کے مختلف قسمیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں. سب سے پہلی قسم ہے خلقت میں توحید, یعنی خدا کے علاوہ کوئی بھی خالق نہیں ہے. اگر کوئی خلق کرنے والا ہے کائنات میں تو وہ فقط اور فقط خدا کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی خلق نہیں کرتا, عدم سے وجود نہیں دیتا. اس کے بعد ملکیت یا مالکیت میں توحید. مالک دو طرح کے ہوتے ہیں. مالک کہتے ہیں جس کو حق تصرف ہوتا ہے, میں اس کتاب کا, اس لیپ ٹاپ کا مالک ہوں, یعنی اس پہ حق تصرف مجھ کو ہے, میری مرضی سے اس پہ اس کو کوئی یوز کرے گا, میری مرضی چلے گی اس میں. کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جس کی مرضی چلتی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ واجب الوجود ہے اور وہ خدا ہے. بس مالک دو طرح کے ہو گئے, ایک مالک اعتباری اور ایک مالک حقیقی. ہم بھی مالک ہیں, ہم گاڑی کے مالک ہوتے ہیں, ہم گھر کے مالک ہوتے ہیں, ہم چیزوں کے مالک ہوتے ہیں, لیکن یہ حقیقی نہیں ہے, اعتباری ہے. اعتباری کیا ہے؟ میں نے مثلا چند کاغذ کے ٹکڑے دیے ہیں, لوگوں نے اعتبار کیا کہ میں یہ ٹکڑے دے دوں گا تو یہ اس میں حق تصرف میرا ہوگا, میں اس کا حقیقی مالک نہیں ہو گیا. ہم نے فرض کیا ہے, جیسے اعتباری کہتے ہیں, جیسے سگنلز کے لائٹس ہوتی ہیں, سب نے سپوز کر لیا ہے کہ ریڈ کلر ہوگا تو رکیں گے, یہ کوئی حقیقت میں ایسا نہیں ہے, ایک سپوزیشن تھی جو کچھ لوگوں نے کر لی, اعتبار کیا اس کو, موت اعتبار کیا, گرین پہ ہم چلیں گے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہ جو جتنی چیزوں کے انسان مالک ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ اعتباری ہے. ہم نے فرض کیا ہے کہ کچھ اگر کوئی شخص اس گھر کے لیے کچھ پیسے دے دے گا, وہ حق کے تصرف اس میں رکھتا ہے, لیکن مالک حقیقی کائنات کا ایک ہی ہے. بس اگر ہم اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں, یہ مجازی ہے, مجاز ہے, یہ مجازی. حقیقت میں ایک ہی ہستی ہے جو اس پورے کائنات کی مالک ہے, یعنی اس پورے کائنات میں حق کے تصرف رکھ سکتی ہے. بس دو طرح کے مالک ہو گئے, ایک حقیقی اعتباری, اور کائنات میں ایک حقیقی مالک ہے اور وہ فقط اور فقط خدا کی ذات ہے. یہ ہے مالکیت میں توحید. تیسری چیز جو ہے وہ ہے ربوبیت تکوینی میں توحید. رب جو ہم کہتے ہیں, معمولاً ہم پوچھتے ہیں رب کے معنی کیا ہے, یعنی لوگ کہتے ہیں پالنے والا, लेकिन इससे आगे नहीं बता सकते क्या मतलब है पालने वाला। पालने वाला का मतलब है ज़रूरियात पूरी करने वाला। जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पौधों को ज़िंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। इस कायनात पर लाइफ रहे उसके लिए सनलाइट की ज़रूरत है। अगर सूरज ना होता तो इस ज़मीन पर कुर्रे अर्ज पर हयात नामी चीज़ ना होती, ठीक है। ये जो ज़रूरियात हैं ये फ़कत एक हस्ती है जो ये ज़रूरियात पूरी करती है कायनात की, और वो खुदा की ज़ात है। इसको कहते हैं रबू, रब, रब तकवीनी और रब तशरी। तकवीनी और तशरी का फ़र्क मैं ज़रा पहले वाज़े करता हूँ। बस इसका मतलब है कि कायनात में एक खल्क करने वाला है वो खुदा की ज़ात है। ये है तौहीद खालिकियत। कायनात में हक़ के तसर्रुफ़ फ़कत एक ज़ात को है, बाकी सब मौत एतबारी हैं। उनको टाइम दिया गया है टेम्पररी तौर पर कि वो इसको इसमें तसर्रुफ़ करें, जब भी चाहे खुदा ये हक़ के तसर्रुफ़ हमसे ले सकता है। बस तौहीद मालिकियत। अब कायनात की ज़रूरत को फ़कत एक हस्ती पूरा करती है और वो खुदावंद मुताल की ज़ात है। बस रब पालने वाला या ज़रूरियात पूरी करने वाला, रब का मतलब है ज़रूरत पूरी करने वाला। ज़रूरत पूरी करने वाला फ़कत और फ़कत एक खुदा की ज़ात है। अब ये ज़रूरियात हमारी दो तरह की है। एक ज़रूरियात जो है वो है तकवीनी यानी फ़िज़िकल। हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए सनलाइट चाहिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा चाहिए, फल चाहिए, वाइटामिन्स चाहिए। ये सब चीज़ें खुदा ने, क्योंकि वो रब तकवीनी है। तकवीनी यानी कौन, कौन से निकला है तकवीन, कौन यानी कायनात। बस कायनात की एक ज़ाहिरी और फ़िज़िकल ज़रूरियात हैं वो खुदा पूरी करता है, इसलिए खुदा रब तकवीनी है। रब तशरीई क्या है, तमाम चीज़ों को जैसे दरख्तों को, जानवरों को, मसलन पहाड़ों को, पानी को, समंदर को, उनकी भी ज़रूरियात हैं वो खुदा पूरी करता है, और हमारी भी फ़िज़िकल ज़रूरियात हैं, उनकी भी फ़िज़िकल और केमिकल ज़रूरियात हैं जो खुदा पूरी करता है। लेकिन इंसान की एक और ज़रूरत है औरों के और अशिया के अलावा, वो क्या है, उसको एक कानून चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको एक रूल लॉ चाहिए। उसको वो लॉ खुदा देता है। बस इंसान के अलावा दीगर कायनात की अशिया की फ़कत एक ज़रूरत है, ज़रूरत तकवीनी, ठीक है। वो ज़रूरत तकवीनी खुदा पूरी करता है। जैसे बीज को दरख्त बनना है, अब उसकी ज़रूरत है कि उसको पानी मिले, उसकी ज़रूरत है उसको खाद मिले, उसकी ज़रूरत है सनलाइट मिले, ज़रूरत है कि माली उसकी हिफाजत करे, ये सब ज़रूरियात तकवीनी हैं जो खुदा पूरी करता है। हमें भी रुश्त करने के लिए, बड़े होने के लिए हमें ग़िज़ा चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए, वो खुदा प्रोवाइड करता है। लेकिन और अशिया के अलावा इंसान की एक और ज़रूरत है और वो है कानून की ज़रूरत। हमें ज़िंदा रहने के लिए इज्तिमाई तौर पर इज्तिमाई कवानीन की ज़रूरत है। खुदा कहता है कि ये मैं दूंगा, तुम खुद से अपना कानून नहीं बना सकते हो। बस कानून देने वाला फ़कत खुदा की ज़ात है। बस हम पर सिर्फ एक हस्ती का कानून चलेगा और वो खुदा की ज़ात है। बस रबूबियत तशरीई ये हो गया। तशरीई का मतलब है शरीयत से निकला है, शरीयत यानी कानून, कानून इज्तिमाई। और इसके बाद है उलूहियत में तौहीद। इलाह, इलाह कहते हैं लायक इबादत। एक होता है माबूद, एक होता है इलाह। माबूद होता है जिसकी भी इबादत की जाए वो माबूद है। अगर बुत की इबादत की जा रही है वो भी माबूद है, दरख्त की इबादत की जा रही है, सूरज को पूजा जा रहा है, चांद को पूजा जा रहा है, ये सब माबूद हैं। लेकिन एक माबूद हकीकी है, बाकी सब जाली हैं। वो हकीकी माबूद को कहते हैं इलाह, इलाह कहते हैं लायक़े इबादत, शाइस्ता इबादत, इबादत के लिए शाइस्ता। बस सबसे पहले कायनात को खल्क किया गया, सिर्फ खुदा की ज़ात ने उस कायनात को खल्क किया। जब कायनात को खल्क कर दिया, अब हक़ के तसर्रुफ, फ़कत उसी ज़ात को हक़ के तसर्रुफ है जिसने खल्क किया है, दूसरा हक़ के तसर्रुफ नहीं रखता। अगर मैंने एक किताब लिखी है, मैं उसको अमेंड कर सकता हूँ, किसी और को हक हासिल नहीं है कि वो उसको अमेंड करे। बस अगर इस कायनात को एक खुदा ने खल्क किया है तो उसका मालिक भी वही होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। लिहाजा तौहीद मालिकियत हो गई। अब जब खुदा ने खल्क किया है और वही इसमें हक के तसर्रुफ रखता है, अब इस कायनात को बाकी रहने के लिए जो ज़रूरियात हैं इसकी, वो किसको प्रोवाइड करना चाहिए? उसी को प्रोवाइड करना चाहिए। लिहाजा रब, तौहीद रबूबियत भी फ़कत एक खुदा है। अब ये रबूबियत जो है, रब दो तरह के, ज़रूरियात दो तरह की है, एक हमारी फिज़िकल ज़रूरियात हैं और एक हमारी कानून की ज़रूरत है कि हमें साथ रहने के लिए कुछ कवानीन की ज़रूरत है, कुछ हुकूक आते हैं। ये सब खुदा कहता है ये सब मैं दूंगा, क्योंकि मैं हक के तसर्रुफ तुम में रखता हूँ। अब लायक़ इबादत, शाइस्ते इबादत कौन सी ज़ात होती है? अगर हम फ़र्ज़ करें हम चाहते हैं किसी की इबादत करें, हमें किसकी इबादत करनी चाहिए? हमें उसकी इबादत करनी चाहिए जिसने हमें खल्क किया है, अदम से वजूद दिया है। हमें उसकी इबादत करनी चाहिए जो हमारा मालिक है, यानी जो हम में हक के तसर्रुफ रखता है, ताकि हम उससे मांग सकें, वो हम में पॉजिटिव चेंजेस करें। हाँ, नंबर तीन, हमें उसकी इबादत करनी चाहिए जो हमारी ज़रूरियात पूरी करता है। लिहाजा ये सब आपस में कनेक्टेड है। जो खालिक है उसी को मालिक होना चाहिए, जो मालिक है उसी को रब होना चाहिए, और जो खालिक है और मालिक है और रब है, हमें उसी की इबादत करनी चाहिए, और इसको कहते हैं उलूहियत में तौहीद। अब मुझे अंदाज़ा है कि बहुत ही खुश्क मबाहिस हैं और बिल्कुल ही इसको कहते हैं एकेडमिक लिहाज से इसको रखा गया है। इसमें सारे, मैं बहुत सारे वाक़यात डाल सकता था, बहुत सारी अहादीस और रिवायात डाल सकता था, लेकिन फिर हम अपनी गुफ्तगू से को कंप्लीट नहीं कर पाते। खैर, अब ये जो तौहीद अफ़ाली हैं, इसमें मसलन रबूबियत तकवीनी में तौहीद, ये जो गुज़िश्ता कौमें गुज़री हैं, जो हमें क़ुरान में मसलन हज़रत इब्राहिम की कौम, हज़रत मूसा की कौम, हज़रत नूह की कौम, वो इसमें मुश्किल थी उनकी रबूबियत तकवीनी में तौहीद। वो कहते थे कि मसलन कुछ फ़रिश्ते हैं जो कायनात को चला रहे हैं, इसलिए वो उनकी फिर इबादत भी करते थे। तो जब उसके बाद फिर उलूहियत में भी उन्हीं ही की इबादत भी करते थे, और इसीलिए जितने अनबिया आए हैं उन्होंने रबूबियत तकवीनी पर काफ़ी जिहाद किया है। बस हज़रत इब्राहिम का कहें देखें तो वो कहते हैं कि मैं उस खुदा को नहीं मानता जो डूब जाता है, सूरज डूब जाता है, चाँद कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, मैं ऐसे खुदा को नहीं मानता, मैं ऐसे खुदा को मानता हूँ जो हमेशा बरकरार रहता है। तो अनबिया ने जो है रबूबियत तकवीनी के ख़िलाफ़ काफ़ी जिहाद किया। ख़ुद रसूल अकरम जिस ज़माने में पैदा हुए, वहाँ भी मुशरिकीन मक्का रबूबियत तकवीनी में प्रॉब्लमेटिक थे, कहते थे कि ये चला रहे हैं, ये बुत कायनात चला रहे हैं, ये बुत हमारी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, हमें रिस्क दे रहे हैं, हमारी चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। लिहाजा रबूबियत तकवीनी जो अक़वाम गुज़िश्ता में पाए जाते थे, और इसके लिए खुदा ने अनबिया भेजे और उन्होंने इसके ख़िलाफ़ जिहाद किया। रबूबियत तशरीई, ये बहुत अहम है। आजकल हम जिससे दो चार हैं वो ये है, आज की जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो रबूबियत तशरीई को नहीं मानती। क्रिश्चियन वर्ल्ड है, सब कहते हैं हाँ खुदा है, ठीक है, अब वो एक है या क्या है, तीन है, जो भी है, बिलाखिर हमें किसी ने पैदा किया है। लेकिन कानून हम खुद अपने लिए बना सकते हैं, किसको क्या सजा देनी है ये हम अपनी अकल से तशखीस दे सकते हैं। अगर किसी ने चोरी की तो उसकी क्या सजा है ये हम तशखीस दे सकते हैं, हमें खुदा आके नहीं बताएगा कि इसकी सजा क्या होनी चाहिए। इसलिए अब जो है वो जुर्म शनासी ये एक पूरी एक फील्ड है, एक पूरा इल्म है कि हर चीज़ की क्या सज़ा होनी चाहिए। मसलन एक डिबेट है कि जो तख्तेदार पर लटकाते हैं यानी जान ले लेते हैं एक शख्स की, तो कहते हैं कि कोई भी गुना ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी सज़ा ये हो कि उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। तो इसका मतलब है कि वो इस बात को नहीं मानते कि कोई और हमें आकर बताएगा, वो कहते हैं हमारी अक्ल इतनी है, इतनी काबिलियत रखती है कि हम अपने लिए कानून बना सकें। और उनका दावा ये है कि देखें हमारा माशरा इस वक्त कामयाब चल रहा है, हमारे माशरे में वेस्टर्न वर्ल्ड में जुल्म नहीं है, हर हकदार को उसका हक मिलता है। लेकिन हम ये समझते हैं कि वो माशरा भी अब तक अपने जो अदालत इज्तिमाई का दर्जा है वहाँ तक नहीं पहुँच सका है, वहाँ भी आज जुल्म है, अलबत्ता उसकी शक्लें मुख्तलिफ हैं और शायद हम यहाँ बैठ के उन चीज़ों को महसूस नहीं कर सकते हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं वो उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। और एक वक्त आएगा कि वो लोग भी इस दर्जे तक पहुँचेंगे कि नहीं, हमें एक कानून देने वाले की ज़रूरत है कि जो हमें बताए कि हम किस किस्म के कानून बनाएं। उसकी एक दलील है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाता, और वो ये दलील है कि हर मुल्क, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही क्यों ना, उसका कानून तब्दील होता रहता है वक्तन फवक्तन। कानून गुजार जो हैं, कानून बनाने वाले हैं, वो गौर व खौस करते हैं, कहते हैं नहीं हमारा पिछले कानून में ये नकाइस थे, इसलिए इसको चेंज होके अमेंडमेंट होके अब ये कानून बनना चाहिए। कानून साज असेंबलियाँ जो होती हैं वो कानून को तब्दील करती रहती है, नए नए कानून आते रहते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये जो कानून हमने दे दिया है ये लास्ट कानून है, इस ये तब्दील नहीं होगा, सिवाय खुदा के भेजे हुए कानून के, कुरान के कानून के, जो कि तब्दील नहीं हो सकता। कुरान का दावा है कि ये कानून जो हमने भेजा है, ये कानून की किताब जो हमने भेजी है, इसमें जो कवानीन हैं वो काबिले तगीर नहीं हैं। अब इंसान की अक्ल नाकिस है कि वो इस कामिल कानून को नहीं समझ सकती, और एक वक्त आएगा कि उसकी अक्ल इतनी कामिल हो जाएगी। अब ये रबूबियत तशरीई में एक बहस है, एक तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड की, एक बहस है इबलीस से मुतालिक कि शैतान जो इबलीस जो था, और वो जो वाक़या आपके सामने है कि उसने सिजदा नहीं किया, उसने कौन सी तौहीद को नहीं माना। कुरान में हमें आयतें मिलती हैं कि खिलकत में तौहीद को मानता था, क्यों? क्योंकि कुरान की आयत है कि हाँ खलकतनी मिनन नार व खलकतहु मिनत तीन, तूने मुझे आग से खल्क किया, बस तौहीद खालिकियत को मानता था कि तूने मुझे खल्क किया, ये तो मानता था ना कि तूने मुझे आग से खल्क किया उसको। इसी तरह मालिकियत में तौहीद, इसको भी खुदा इसको भी इबलीस मानता था, मेरे जहन में सब आयत नहीं है। इसी तरह रबूबियत तकवीनी को भी मानता था, फिर काला रब्बे बेमा अगवैतनी, यानी जो उसने कसम खाई है मेरे रब की कसम, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा दुश्मन जो है कसम खुर्दा दुश्मन है, उसने कसम खाई है बेमा अगवैतनी कि मैं ज़रूर और ज़रूर अगवा करूँगा, ए आदम ए इंसान मैं तुझे ज़रूर अगवा करूँगा। हमारा दुश्मन जो है कसम खुर्दा दुश्मन है, कमिटेड फुल टाइम जो है वो हमारे पीछे लगा हुआ है, लेकिन हम जो है वो मुतवज्जे नहीं है कि कोई दुश्मन हमारी ताक में बैठा हुआ है। जैसे ही हमने मौका दिया तीर फेंकेगा। ये है इबलीस, ये है शैतान। बस शैतान जो है तौहीद खालिकियत को मानता था, तौहीद मालिकियत को मानता था, रबूबियत तकवीनी को मानता था कि ए रब मैं तेरी कसम खाता हूँ, बस खुदा को रब भी मानता था, ठीक है। फिर क्या क्या चीज़ नहीं मानता था, कहा मैं तुझे सिजदा नहीं करूँगा, यानी रबूबियत तशरीई, शरीयत तेरी नहीं मानूंगा, मैं अपने मर्जी के मुताबिक अमल करूंगा। बस अगर आज की वेस्टर्न वर्ल्ड अगर कहती है कि हम जो हैं वो कानून खुद का मनाना चाहते हैं, ये बिल्कुल इबलीस का अमल है। ये इबलीस ने भी कहा खुदा तूने जो मुझे कहा है इसको सिजदा करना गलत कहा है, सही ये है कि मैं अफजल हूँ उससे, मुझे आग से खल किया, इसको खाक से खल किया, बस खुदा के सामने आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि खुदा तू तशरी खिलकत फकत खालिक फकत तू है, मालिक फकत तू है, रब तकवीनी फकत तू है, लेकिन शरीयत में मैं भी हूँ, मेरी अकल भी कुछ कहती है। बस अगर कोई हुक्म इलाही की को नहीं मानता है, मिलते हैं हमें लोग के भाई ये खुम्स कहाँ से आ गया, खुम्स क्यों लगाया खुदा ने, मसलन लोग एतराज़ करते हैं अहकाम में ना कि खुदा ने फलां क्यों रखा, फलां चीज़ क्यों रखी है, फलां चीज़ क्यों रखी है, ये इसका मतलब है कि हम समझते हैं कि हम भी कुछ समझते हैं खुदा के मुकमना उज़ुबिल्ला, यानी खुदा सही नहीं समझता। मसलन कहते हैं मुर्तद का हुक्म जो है वो अगर कोई जो है वो मुसलमान काफिर हो जाए तो उसकी सज़ा क्या है, वो तख्तेदार है। मसलन कहते हैं जुल्म है, इसको आज़ादी होनी चाहिए, ये क्या है रबूबियत तशरीई को ना मानना है। अगर खुदा के किसी हुक्म पर एतराज़ करना रबूबियत तशरीई में नक्स के बराबर है। और उलूहियत में तौहीद, ये जो हमारा कलमा है कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको कहते हैं हद निसाब, यानी अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह को मान ले तो वो मुसलमान होता है। जब तक ला इलाहा कोई इलाह नहीं है, कोई लायक के इबादत नहीं है सिवाय अल्लाह के, तब वो मुसलमान हो जाता है। उलमा ने आगा मिसबा यजदी ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है कि कलमा ये भी हो सकता था ला खालिका इल्लल्लाह, कोई खालिक नहीं है सिवाय खुदा के, लेकिन कलमा ये करार नहीं पाया। ला मालिका इल्लल्लाह, कोई भी हक के तसरुफ नहीं रखता सिवाय खुदा के, ये भी हो सकता था लेकिन ये भी नहीं रखा गया। ला रब इल्लल्लाह, कोई भी रब नहीं है, ज़रूरियात पूरी करने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह के, बल्कि कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई भी लायक इबादत नहीं है। क्यों कहा गया ला इलाहा, क्योंकि इलाह में ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। लायक इबादत कौन होता है, जिसने हमें खल्क किया है, जो हक के तसर्रुफ रखता है हम में, जो हमारा रब है, ठीक है। बस अगर हम सिर्फ कहते हैं ला खालिका इल्लल्लाह तो कोई मालिकियत में किसी और को तौहीद मानता खुदा, अगर जो है हम सिर्फ ला मालिका इल्लल्लाह कहते तो कोई रबूबियत में किसी और को भी शरीक करार दे देता, लेकिन जब कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा तो इसका मतलब है कि उसने खुदा को खालिक भी मान लिया, खुदा को मालिक भी मान लिया और खुदा को रब भी मान लिया। तो ये फ़लसफ़ा है कलमे तौहीद का ला इलाहा, यानी लायक इबादत। कुछ और लोगों ने कहा गया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इसलिए कहा गया है कि ये हमारे अमल से मुताल्लिक है। ला खालिका इल्लल्लाह यानी खुदा की ज़ात में है वो, یہ صفت خدا کی ذات میں ہے. لا مالکہ یہ بھی خدا سے ریلیٹڈ ہے. لا رب الا اللہ, خدا کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے یہ. لیکن لا الہ الا اللہ ہم کو عمل کی طرف دعوت دیتی ہے. اگر یہ لائق عبادت ہے تو پھر عبادت کرو. لیکن لا خالقہ الا اللہ میں کوئی عمل نہیں ہے, لا مالکہ الا اللہ میں کوئی عمل نہیں ہے, کوئی عمل کی طرف آپ کوئی موٹیویشن نہیں ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ خدا کے علاوہ کوئی لائق پرستش لائق عبادت نہیں ہے, تو یہ ہمیں عمل کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے شاید لا الہ الا اللہ کہا گیا ہے. اس میں اور بھی گفتگو ہیں, لیکن پھر ہماری جو اگلی بحث ہے توحید عبادی. ٹائم ہو گیا, بریک ہو گیا, یعنی ابھی تک کی گفتگو میں اگر کوئی سوال ہے تو کریں, تو پھر ہم توحید عبادی یا توحید عملی کو شروع کریں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توحید افعالی میں ایک اور اہم گفتگو ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. لیکن پچھلے درس میں بھی میں نے ایک آیت پڑھی تھی حضرت عیسیٰ سے متعلق کہ وَإِذَا تُخْلِقَ, اے عیسیٰ تم خلق کرتے ہو, اے عیسیٰ تم خلق کرتے ہو, کہائی ات تیر, پرندے کی شکل جیسی چیز کو خلق کرتے ہو, اے عیسیٰ تم روح پھونکتے ہو, اے عیسیٰ تم کوڑھ کے مریضوں کو شفا دیتے ہو, اور اے عیسیٰ تم موت دیتے ہو. لیکن ہر چاروں چیزوں میں کہا گیا ہے بے اذنی. ایسا تم خلق کرتے ہو پرندے کو بے اذنی, میری اجازت سے. ایسا تم روح پھونکتے ہو بے اذنی, میری اجازت سے. ایسا تم جو ہے مریضوں کو شفا دیتے ہو بے اذنی, اور تم موت دیتے ہو بے اذنی, میرے اذن سے. بس اگر جب ہم کہتے ہیں توحید خالقیت میں توحید, خدا کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے, یعنی مستقلاً انڈیپینڈنٹ خالق خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن خدا خود یہ خلق کرنے کی صفت اپنے بندوں میں دے سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں وساطت در افعال, یعنی افعال میں وسیلہ قرار دینا. ایک دفعہ میں کام خود سے کر سکتا ہوں, ایک دفعہ میں کسی کو کہتا ہوں یہ کام انجام دو. ٹھیک ہے, مثلا ایک آفس کا میں باس ہوں, میں خود بھی لیٹر لکھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میرے پاس ٹائم کم ہے, میں اپنے سیکرٹری کو کہتا ہوں یہ لیٹر ڈرافٹ کرو. لیکن سیکٹری کا لیٹر ڈرافٹ کرنا اور میرا لیٹر ڈرافٹ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں خود سے لیٹر لکھتا ہوں, وہ سیکٹری جو ہے میری اجازت سے لیٹر لکھتا ہے. تو کائنات میں ایک دفعہ خدا خلق, ہم کہتے ہیں کچھ آیتیں اس طریقے سے ہیں نا, الا لہ الخلق والامر, فقط اور فقط خدا خلق کرتا ہے اور امر کرتا ہے, یعنی تدبیر امور کو مینیج کرتا ہے فقط خدا. لیکن ایک آیت میں آ گیا فل مدبرات امرن, ملائکہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ کائنات کو مینیج کرتے ہیں, کائنات کو چلاتے ہیں. ایک آیت میں کہا گیا صرف خدا امر کرتا ہے, خدا خلق کرتا ہے. ایک آیت میں کہا گیا فل مدبرات امرن, ملائکہ کائنات کو چلاتے ہیں. तो इसमें क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है इसमें। खुदा जो है वो बगैर किसी की इजाजत के मुस्तकिलन अपनी इरादे से खल्क करता है और अमर करता है। मलाइका खुदा के सबऑर्डिनेट्स हैं, खुदा उनको अगर पावर्स देता है, इजाज़त देता है, वो उसके ज़रिए से काम करते हैं। पिछले दरस में भी इसकी वजाहत दे चुका हूँ, इसलिए हम इस तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए कुरान में बहुत सारी आयतें जो हैं वो हमें ऐसी कॉन्ट्राडिक्ट मिलती हैं। और जो लोग मसलन कहते हैं कि वसीलों के कायल नहीं हैं, जो फिरके वसीलों के कायल नहीं हैं, वो सिर्फ इस किस्म की आयतों को ले लेते हैं, दूसरी आयतों को जिक्र नहीं करते। मसलन हर जैसे शफात के लिए वलिल्लाहि शफाअतुन जमीअन, फ़कत और फ़कत खुदा के लिए शफात है, शफात करने वाला फ़कत खुदा। ये कुरान की आयत वाज़े कह रही है वलिल्लाहि शफाअतुन जमीअन, फ़कत और फ़कत खुदा के लिए है शफात। ये आयत को दिखाते हैं, देखो मुसलमान पढ़ो, ये क्या लोग कहते हैं ये शफात कराएंगे, नबी शफात कराएंगे, शहदा शफात कराएंगे, आइम्मा शफात कराएंगे। खुदा कह रहा है सारी की सारी शफात फकत मेरे लिए है। दूसरी आयतों को बयान नहीं करते जहां कहा गया है मंजल लजी यशफाउ इंदहु इल्ला बेइज़्ने, वो लोग शफात कराएंगे जिन लोगों को खुदा की तरफ से इज्न है। ये आयत बयान नहीं करते, इसका मतलब खुदा के अलावा भी कुछ लोग हैं। अलबत्ता ये बेइज्न बहुत लाजमी है। अगर हमने आइम्मा को नाउज़ु बिल्ला ये समझ लिया कि खुदा से हटकर मुस्तकिलन शफात करेंगे, ये गलत है। सही अकीदा ये है कि खुदा ने कुछ हस्तियों को ये अथॉरिटी दी है, ये पावर्स दिए कि तुम भी शफात करा सकते हो। नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि खुदा में वो सिफत नहीं रही। जैसे मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मैं अपना इल्म बांटता हूँ, मसलन दूसरों को भी पढ़ा सकता हूँ, ये चीज़ें दूसरों को भी दे सकता हूँ। खुदा ने जो कायनात बनाई है इसको चलाने के लिए जो रूल्स रखे हैं उसमें वसीले हैं। बारिश कौन बरसाता है? खुदा बारिश बरसाता है। रिस्क कौन देता है? खुदा रिस्क देता है। हमारी भूख कौन मिटाता है? खुदा भूख मिटाता है। लेकिन उसने कहा है वसीलों के ज़रिए से ये काम होंगे, बादलों के ज़रिए से मेरी बारिश बरसेगी, खाने के ज़रिए से तुम्हारी भूख मिटेगी, पानी के ज़रिए से तुम्हारी प्यास बुझेगी। एक दफ़ा का वाक़या, ज़रा सा थोड़ी सी बहस को हम वाक़यों से ज़रा बेहतर हो जाती है। हज़रत मूसा जो है वो बीमार हो गए, तो जब बीमार हो गए तो अफराद आए उनके पास कि भाई ये जड़ी बूटी है, ये आप खा लें तो आप सही हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा शिफा देने वाला फ़कत खुदा की ज़ात है। कुरान में आयत भी है कि सिर्फ शिफा जो है मरीजी से शिफा याबी जो है फ़कत खुदा की ज़ात करती है। तो कहता है मैं, हज़रत मूसा ने कहा मैं सिर्फ खुदा से शिफा चाहूँगा, जब वो शिफा देने वाला है तो मुझे क्या ज़रूरत है ये दवाई लेने की। आज के मुसलमानों का भी यही मुश्किल है, ये यहीं अटक गए हैं। ये सही है कि जब हम खुदा से डायरेक्ट मांग सकते हैं, हमें क्या ज़रूरत है तवस्सुल करने की, हमें क्या ज़रूरत है वसीले तलब करने की। हो हज़रत मूसा ने उन सबको तो भगा दिया, अब वो सही नहीं हुए, सही नहीं हुए, सही नहीं हुए। फिर वही नाजिल हुई कि मूसा तुम सही कहते हो कि शिफा हमारी जानिब से है, हम हैं जो हर एक को मरीज़ को सेहत याबी देते हैं। लेकिन हमने शिफा को इस जड़ी बूटी में रखा है, जब तक ये जड़ी बूटी नहीं लोगे सही नहीं होगे। बस खुदा ने इस कायनात को वसीलों के जरिए करार दिया है, यानी सूरज के जरिए से धूप आएगी, ये खुदा ने ही करार दिया है, ये वसीलों को भी खुदा ने करार दिया। और खुदा चाहे तो बगैर वसीलों के जरिए भी ये काम कर सकता है, वो मोहताज नहीं है कि अगर बादल नहीं होंगे तो बेचारा बैठ जाएगा कि अब मैं कैसे बारिश बरसाऊं, नहीं, वो बगैर बादलों के बारिश बरसा सकता है, वो बगैर मसलन पानी के हमारी प्यास बुझा सकता है, लेकिन उसने एक जनरल रूल्स बनाए हैं। कभी कभी हम इस जनरल रूल से खुदा वो भी करता है, यानी हम इस्तस्ना हम कहते हैं, एक्सेप्शनल केस भी होते हैं कि खुदा बगैर पानी के प्यास भी बुझा देता है, बगैर दवाई के शिफा दे देता है, लेकिन जनरल जो है वो क्या है, वो ये वसीलों के ज़रिए इसने कायनात को खल्क किया। बस अगर कोई ये कहे कि जब हमने कह दिया कि खुदा के अलावा कोई खल्क नहीं कर सकता, हाँ, बस खुदा के मुकाबले पर मुस्तकिलन कोई खल्क कर रहा है ये महाल है, लेकिन ऐसा नहीं कि खुदा भी किसी को इजाज़त नहीं दे सकता कि वो खल्क करे। बस हम अरबी में कहते हैं कि खालिकियत रुबूबियत दर अर्ज महाल है, यानी अगर हम उसको वर्टिकल लेंगे, एक दूसरे के मुकाबले पर लेंगे महाल है। अगर कोई ये कहता है कि मौला अली भी रिस्क देते हैं खुदा भी रिस्क देता है, ये शिर्क है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा जो है मौला अली को ये पावर्स नहीं दे सकता, इसका मतलब ये तो और खुदा की ताकत को महदूद करना हुआ है। खुदा ने ऐसे बंदे खल्क किए जिनको ये काम सौंपा है कि तुम्हें रिस्क बांटना है। इसीलिए इमाम अली कहते हैं कि अना कसीम जन्ना वन्ना, मैं जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाला हूँ, कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा के मुकाबले पर मसलन खुदा किसी को कह रहा है ये जहन्नम में जाएगा, अली ने कहा मैं हूँ ये जन्नत में जाएगा, ऐसा नहीं है। खुदा ने ये पावर्स आइम्मा को दिए, यानी ये बहुत बुनियादी बहस है जो हमारे माशरे में सही से नहीं समझी गई, इसलिए लोग गलत डायरेक्शंस में अकीदे रखते हैं। सही कॉन्सेप्ट अगर हम एक दफ़ा समझ लें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा और हमारे लिए जो कन्फ्यूजन्स पैदा होते हैं वो नहीं होंगे। हाँ ज़ाहिर एक सलवात पढ़ दें, मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमारी गुफ्तगू तौहीद अफ़ाली पर तकरीबन कंप्लीट हो गई और आखिरी बात जो हमने की है वो ये की कि इन सब तौहीद अफ़ाली यानी खुदा अपने अफ़ाल में यानी खल्क करने में मालिक होने में रब होने में किसी का मोहताज नहीं है और इसी को हम तौहीद अफ़ाली कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुदा बग़ैर वसीलों के काम करता है, ये दो बातें अलग अलग हैं। एक दफ़ा ये है कि खुदा जो है वो इंडिपेंडेंट है अपने अफ़ाल में, और दूसरी बात यह है कि खुदा अपने काम जो है वसीलों के ज़रिए करता है, ये दोनों चीज़ें काबिले जम हैं, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती हैं। और इसी तरह बहुत सारी आयतें इसी के ज़िम्न में आई हैं कि जो बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि एक जगह कहा गया कि कोई खालिक नहीं है, एक जगह कहा गया हज़रत ईसा तुम खल्क करते हो परिंदे को, तो एक आयत में कहा गया कि कोई शिफा नहीं करता फ़कत खुदा के, दूसरी आयतों में कहा गया है कि मसलन हज़रत ईसा शिफा देते हैं, और इसी तरह से शफात से मुतालिक आयतें हैं और दीगर आयतें हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती, बल्कि सिर्फ फ़र्क ये है कि खुदा जो खल है वो मुस्तकिलन इंडिपेंडेंट इज़्नी के, दूसरे लोग जो खल करते हैं वो उस पावर से खल करते हैं जो खुदा उनको देता है, खुदा जो उनको इजाज़त देता है, बस वो सब डिपेंडेंट हैं और खुदा की खालिकियत जो इंडिपेंडेंट है, बस इंडिपेंडेंट खालिक फ़कत और फ़कत खुदा है, डिपेंडेंट खालिक दूसरे भी हो सकते हैं और वो सब खुदा पर मुंतही होते हैं। بس یہ بات ہماری گفتگو توحید افعالی کے ضمن میں ختم ہو گئی. توحید عبادی جس کو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں توحید عملی کہا تھا, توحید عملی اور توحید عبادی ایک ہی چیز ہے. کبھی بعض کتابوں میں توحید عبادی کہا جاتا ہے اور بعض کتابوں میں توحید عملی کہا جاتا ہے, دونوں کا بات ٹھیک. بس یہاں پہ توحید عملی ہم نے کہا ہے کہ ہر عمل فقط اور فقط خدا کے لیے ہونا چاہیے. اب یہاں پہ توحید عبادی یا توحید عملی کی اقسام ہیں. نمبر ایک, عبادت میں توحید. ہمیں فقط اور فقط ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توحید عملی ہم سے ریلیٹڈ ہے. اس کے پہلے اوپر تینوں جو توحیدیں تھیں وہ خدا کی ذات اور صفات سے ریلیٹڈ تھی, اس کے افعال سے ریلیٹڈ تھی. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کیونکہ اس کائنات کا خالق ایک ہے, مالک ایک ہے, رب ایک ہے, الہ ایک ہے, یعنی جو لائق عبادت ہے وہ ایک ہے, بس عبادت میں توحید. ہمیں ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے. اطاعت میں توحید. اب کیونکہ الہ لائق عبادت ایک ہے, کیونکہ ہمارا خالق, ہمارا رب, ہمارا مالک, ہمارا الہ ایک ہے, تو اب اطاعت بھی اسی کی کرنی چاہیے. فار ایگزامپل, ہمارا باس ہمیں ایک بات کہتا ہے کہ مثلا نماز کے وقت جو ہے کام کرو, ٹھیک ہے, ہمارا خدا جو ہے کہتا ہے نہیں, اس ٹائم پہ تمہیں نماز پڑھنی چاہیے. اب ہمیں کس کی اطاعت کرنی چاہیے؟ ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے جس نے ہمیں خلق کیا ہے. ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے کہ جو ہمیں رزق دیتا ہے, جو ہمارا, ہم خدا کی اطاعت کر رہے ہیں, رسول کی اطاعت کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی دو کانٹرڈکشن نہیں ہے. اس کے بعد توکل میں توحید, یعنی فقط اور فقط ہمیں خدا پر توکل کرنا چاہیے. عملی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ہم دوسروں پہ بھروسہ کرتے ہیں,